نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا جو ہم سیشن سن کے جائیں تو اپنی زندگی کے لیے کوئی رہنمائی لے کر جائیں. آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے قصص القرآن سے ہمارے لیے رہنمائی. آپ نے ٹاپک پڑھا ہوگا. یہ ٹاپک ایسا ہے جو ہماری انڈیویجول لائف اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہماری رہنمائی کے لیے اور ایز امت جو ہم اس وقت حالات فیس کر رہے ہیں اس میں قرآن ہمیں کیسے رہنمائی دیتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. قصص تو بہت سارے ہیں قرآن کریم میں اور ان میں سبق بھی بہت سارے ہیں. جتنا آپ غور و فکر کریں اتنے ہی زیادہ آپ کو قرآن کے معجزے, یہ اعجاز ہے قرآن کا, اتنی زیادہ آپ کو رہنمائی ملتی ہے. مگر آج ہم فوکس کریں گے اس چیز پہ کہ میری ذات کے لیے اور امت کے لیے خاص طور پہ کیا رہنمائی ہے اس میں, کیونکہ جن حالات سے آج یہ امت گزر رہی ہے تو ہم سب ایک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. اور قرآن کریم کے قصص ہم پڑھتے ہیں لیکن سٹوری کے طور پہ, اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی یہ کہانی یہ کہانی, اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ریلیٹ کریں, کیونکہ آپ جتنے انبیاء کی تاریخ اٹھا لیں قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے سوائے دو کے, سب نبیوں کی زندگیوں میں مسائل مشکلات رکاوٹیں آئیں. کوئی بھی نبی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جن کی زندگی بہت سموتھ چل رہی ہو, بہت آسانیاں ہوں, کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں, وہ بڑے مزے کر کے چلے گئے, ایسا کوئی نبی آپ کو نہیں ملیں گے. آپ ہر نبی کی زندگی میں سٹرگل دیکھتے ہیں, ہر نبی کی زندگی میں پرابلمز دیکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج ہم ان پرابلمز کو ان کی زندگی سے دیکھ کے اپنی زندگی ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور بعض دفعہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہاں امتحان آئے, ان کے اوپر بھی امتحان آئے, ہمارے اوپر بھی یہ امتحان ہے. امتحان ہے لیکن امتحان میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا امتحان ہے جیسا اسکول میں ایک ٹیچر امتحان دیتا ہے. جب اسکول میں ٹیچر امتحان دیتا ہے, آپ لوگوں نے امتحان دیے ہوں گے, تو آپ کے سامنے ایک پرچہ رکھ دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے آپ اٹیمپٹ کریں. آپ میں سے کوئی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پرابلم میں ٹیچر میری ہیلپ کریں, مجھ سے سالو نہیں ہوتا, نہیں کہہ سکتے نا, وہ چیٹنگ ہو جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جب ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے تو شاید اس نے پرچہ ہمیں دے دیا ہے اور وہ بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ اب یہ کیسے سالو کرے گا. اللہ کے جو امتحان ہیں ان کا یہ طریقہ نہیں ہے, اللہ کے امتحان کا کوئی اور ہی طریقہ ہے. جب وہ آپ کو امتحان دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, یا تو اس کو کال کیا, اس کو کیا, اس سے مدد مانگی, اس سے یا اپنی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ بس میں نے کر کے اب دکھانا ہے اللہ کو, اللہ نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے, میں نے اس پہ کامیاب ہو کے دکھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ آپ ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں یا اللہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے, میں یہ خود نہیں کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ ویٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو مدد کے لیے پکاریں. یہ دنیا کے امتحانوں کی طرح امتحان نہیں ہے, یہ وہ امتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہیں, اللہ میں نہیں اس سے نکل سکتی, تو جب تک نہ نکالے. اور نبیوں کی زندگیوں سے آپ دیکھنا یہ سبق کتنا خوبصورت ملتا ہے, پیغمبر ہو کے بھی اپنی ذات پہ اعتماد نہیں ہے, اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے. پہلی کہانی جو ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں وہ ہے آدم علیہ السلام کی کہانی, پہلا قصہ. اور اس قصے میں ہم کیا دیکھتے ہیں, فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ تو کیا مخلوق پیدا کر رہا ہے, تو زمین میں بڑا فساد کرے گی, بڑا خون بہائے گی, اس کو تو نے چوائس دے دی ہے, اس کو تو نے اختیار دے دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, اور کیا اس میں کیا بات تھی جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ وہ یہ کہ جس مخلوق کو اختیار دیا ہے یہ مخلوق اپنی چوائس سے جب اللہ کی فرما برداری کرے گی، اپنی چوائس سے جب اس کے سامنے سجدے کرے گی، اپنی چوائس سے جب اس کے آگے ہاتھ اٹھائے گی، تو یہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے. اور یہی مخلوق اگر گرنے پہ آئے گی تو اسفل السافلین ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے. دونوں صفات اس مخلوق میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے. اب اس میں کیا پتہ چلتا ہے اس کہانی میں، پہلی کہانی میں، کہ شیطان نے نافرمانی کی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، شیطان نے نافرمانی کی. کیا قصور تھا شیطان کا؟ سجدہ نہیں کیا تھا. آپ سب سے پوچھیں تو کہیں گے نافرمانی کی، تکبر کیا، کوئی کچھ کہے گا. تو نافرمانی تو آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، اور وہ نافرمانی کر کے نبی بن گئے، اور یہ راندہ درگاہ بن گیا، یہ ملعون ہوا. کیا فرق تھا دونوں کی نافرمانی میں؟ حالانکہ دیکھیں، اگر میں آپ سب کو کہوں کہ اس دروازے سے نہیں جانا اور آپ میں سے ایک چلی جائے، کیا یہ بڑا قصور ہے؟ یا اگر میں کہوں فاطمہ آپ نے دروازے سے نہیں جانا اور فاطمہ چلی جائے، یہ بڑا قصور ہے؟ اکیلے کو جب کہا جائے اور وہ نافرمانی کرے تو زیادہ بڑا قصور ہے. اس لیے کہ جب سب کو کہا، ان میں سے ایک نے نافرمانی کی، یہ کم قصور ہے. لیکن ایک بندے کو کہا گیا تم نے نہیں جانا، اسپیسیفک تمہارا نام لے کے کہا گیا، اور تم ہی اٹھ کے چلی گئی. ان دو سچویشنز میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم تمام ملائکہ کو دیا تھا، ایک نے نافرمانی کی تھی، سب نے نہیں کی تھی. اور دوسری طرف آدم علیہ السلام کو نام لے کے کہا تھا کہ تم نے اس شجر کے قریب نہیں جانا. نافرمانی بڑی کس کی ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی. اس کے باوجود آدم علیہ السلام پیغمبری کے رتبے کو پہنچ گئے. آپ وجوہات دیکھیں تو پہلی وجہ ہی کیا پتہ چلتی ہے، شیطان کے اندر جو تکبر تھا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آج وہ چیز جگہ جگہ نظر آتی ہے، انا خیر من، انا خیر من، تم تو انسان ہی نہیں ہو، انا خیر من، میں نے کلمہ کیا پڑھ لیا، میں تو بس سب سے بہترین ہوں، چاہے میرا عمل کچھ نہیں ہے، اس لیے کسی کو جینے کا حق نہیں ہے، صرف مجھے ہے، انا خیر من. اور اپنے مسلمانوں میں بھی انا خیر من، ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمارا اخلاق، کردار اور عمل بتاتا ہے کہ ہم ہر ایک کو نیچا دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اوپر، کہیں پیسے میں، کہیں حسن میں، کہیں فیشن میں، کہیں علم میں، کہیں نیکی میں. پرائڈ آف پائٹی جو ہے نا، یہ سب سے بری چیز ہے کہ انسان کو اپنی نیکی کا زوم ہو جائے کہ میری جیسی نیک تو کوئی ہے ہی نہیں. جس فیلڈ میں بھی ہیں اسی میں اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنا اور دوسرے آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے، یہی ہے جو شیطان کی خوشبو ہے. جس میں یہ ہوتی ہے، شیطان کو اسے اپنی پرفیوم، یہ اس کا پرفیوم ہے، شیطان کو اسے اپنی مہک آتی ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرے جیسا ہی ہے. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ کہ تیرا قصور ہے کہ تو نہ سجدہ کرنے کو کہتا، نہ میں اس حالت تک پہنچتا. جبکہ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. یہ نہیں کہ میرا کیا قصور ہے، وہ بھی تو یہ کہہ سکتے تھے، شیطان نے ورغلایا. اگر آپ سورہ آراف نکال کے دیکھیں تو سارا قصہ ہے کہ شیطان نے کیسے ورغلایا تھا. وہ انہوں نے یہ نہیں کہا میرا کیا قصور ہے، یہ شیطان آیا تھا، اس نے اتنے وعدے کیے تھے، میرا تو کوئی قصور نہیں. مگر آپ دیکھتے ہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں یا اللہ قصوروار میں آئی ہوں. یہ کردار آج اپنانے کی ضرورت ہے، اس کی سازش، اس کی سازش، وہ میرے خلاف، وہ میرے خلاف، تو میں کیا ہوں؟ میں اپنی بھی تو کوئی ذمہ داری قبول کروں. ہم دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام نے ذمہ داری قبول کی، میرا قصور، اور پھر اس کو فکس کیا نا. شیطان نے ذمہ داری قبول نہیں کی، اس نے کہا تیرا قصور ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کون سے بندے پسند ہیں؟ جو اس کے آگے جھک جائیں، جو اپنے قصور مان لیں، جو اعتراف کر لیں یا اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں، صرف ناٹ ایز امہ اونلی، آپ کو اس میں ہر ایک جگہ پہ، جہاں پہ آپ اپنی ذاتی زندگی، اپنی فیملی میں ہیں، اپنی کمیونٹی میں ہیں، अपने घर में है। कितनी दफ़ा ऐसे होता है हम कहते हैं मेरा क्या कसूर है, ये तो मेरे हस्बैंड का कसूर है, वो नहीं अलाउ करते, इस जुर्म में इस गुनाह में किसका कसूर है, असल में बच्चे नहीं मानते, इसमें किसका कसूर है, इसमें ससुराल का कसूर है, वो नहीं मानते। हर जगह हम जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं और अपनी जिम्मेदारी कभी लेना नहीं चाहते कि मेरा भी तो कहीं कसूर हो सकता है। ये तो शैतानियत है कि अपने कसूर नज़र ना आए और हर कसूर जो अपना है उसमें उंगलियां दूसरों की तरफ उठा ली जाए, ये शैतानियत है। और ये करके वो कभी अपनी इस्लाह नहीं कर सका। देखो फिर वो कहाँ पहुँच गया। आप क्या सोचते हैं अगर आदम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी मांगी और उनको माफ़ी मिल गई तो क्या शैतान मांगता तो उसको माफ़ी ना मिलती? अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है, ज़रूर माफ़ी मिल जाती, लेकिन उसका बिहेवियर नहीं था माफ़ी वाला, तो अल्लाह ताला ने धुतकार दिया उसको। अगर हम भी अकड़ेंगे अल्लाह के सामने, अगर हम भी अपने गुनाहों का इतराफ़ करने की बजाय कहेंगे वो कसूरवार, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं, हम तो सबसे मासूम हैं, तो माफ़ी नहीं मिलनी, फिर धुतकार दिए जाओगे। तो एक तो सबसे पहले हमें अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से ये इतनी बड़ी रहनुमाई मिलती है। फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि इब्लीस जो था उसका नाम इब्लीस जो पड़ा इसका मतलब है सख्त मायूस। वो इतना मायूस हो गया कि उसने कहा कि मुझे माफ़ी कभी मिल ही नहीं सकती, इसलिए मैं माफ़ी मांगूंगा ही नहीं। जब आदम भी ये कहने लगे, आज बनी आदम कहने लगे मायूस होके, अब तो कभी हमारा कुछ हो ही नहीं सकता, अब हम इससे नहीं निकल सकते, और अल्लाह के आगे झुके नहीं, तो वो भी अगेन किसके रास्ते पर है? शैतान के। अल्लाह की रहमत से जो मायूस हो जाए, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस होते हैं और कोई नहीं, मोमिन नहीं मायूस हो सकता। तो मायूसी भी शैतान का हथियार है, वो ईमान वालों को भी मायूस कर देता है। फिर हम अगली इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। वो ऐसी एक सिचुएशन में फंस गए थे यूनुस अलैहिस्सलाम, मछली वाले भी वो कहलाते हैं, कि जो किसी भी और इंसान के ऊपर गुज़रती तो वो मायूस हो जाता। कहाँ पे पड़े हुए हैं? मछली के पेट में, समंदर की गहराइयों में, जहाँ पे किसी को आवाज़ दें तो कोई सुन नहीं सकता, किसी पुलिस को कॉल करें तो कोई आ नहीं सकता, कहीं मदद के लिए पुकारेंगे कोई है ही नहीं। इन अंधेरों में जब एक के ऊपर एक अंधेरा है, वो वहाँ मछली के पेट में मायूस नहीं हुए कि मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। हम क्या देखते हैं? असबाब, हमारी नज़र होती है अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है, अगर कुछ हो ही नहीं सकता इंसानी तौर पर पॉसिबल नहीं है ना तो कुछ नहीं अब होना। अब यहाँ पे कौन उनको पकड़ता, कहाँ कौन आके उनको निजात दिलाता, कौन उनकी हेल्प करता? इंसानी तौर पे आप देखें इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि कोई वहाँ तक पहुँचे। कौन समंदरों में ढूंढेगा ऐसी मछली को, कहाँ पड़ी हुई है, कौन सी मछली है, किसके पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम पड़े हुए? लेकिन ये बताता है कि उनका मायूसी नहीं थी, वो अल्लाह के ऊपर तब भी भरोसा किए हुए थे। अगर वो उस वक्त मायूस हो जाते, मेरा क्या, मैंने इसे नबी होके गलती हो गई, अब क्या फ़ायदा, अब बस यहीं पे मर जाता हूँ, नहीं, उन्होंने दुआ का हथियार इस्तेमाल किया। वो दुआ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम ये दुआ ना मांगते तो क़यामत तक मछली के पेट में पड़े रहते। और हम अपनी ज़िंदगी में देखें, जब हमारी ज़िंदगी में, ठीक है मछली तो नहीं है, लेकिन एक अंधेरे के बाद एक अंधेरा, एक ट्रैप के बाद एक ट्रैप, एक चीज़ मुश्किल है तो उसके ऊपर एक और मुश्किल आ गई, तो हम कहते हैं अब हम कहाँ जाएं? फिर इधर उधर देखते हैं कौन हेल्प करेगा, कौन हमें इससे निकालेगा। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को किसने निकाला? कोई इंसान सबब नहीं बना, अल्लाह की ज़ात थी। देखो उसने कैसे निकाल दिया, उसी मछली ने आके उगला उनको। अल्लाह उसी प्रॉब्लम में से तुम्हारे लिए सोल्यूशन निकाल देगा। सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने फरमाया जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता निकाल देता, जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा, उसको वहां से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। ये अल्लाह का वादा है। اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تمہارے اوپر بھی کوئی مسئلہ آ جائے ایسا تو تم بھی کہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں کیا ہے, کیا مانگا انہوں نے؟ مانگا تو کچھ بھی نہیں, اللہ کی توحید بیان کی کہ اللہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں, الہ تو تو ہی ہے, پاک تو تیری ذات ہے, میں تو ظاہر انسان ہوں, اللہ میرے سے اپنے آپ پہ ظلم ہو گیا. اعتراف, عاجزی, جھک جانا, یہ اللہ کو پسند ہے. اور اعتراف کر لو, مان جاؤ کہ میری غلطی ہے. ہم نہ ایز امہ مانتے ہیں کہ ہماری کوئی غلطی ہے, ہماری تو نہیں غلطی, یہود و نصارہ کی سازشیں, فنود کی سازشیں, فلاں کی سازشیں, اور ہم کیا ہیں, ہم تو دودھ دھلے ہیں. نہیں, ہماری غلطی ہے, غلطی مانو اور جھکو. جب تم غلطی مان کے جھک جاؤ گے تب اللہ کی مدد آتی ہے. اور یونس علیہ السلام کہتے کہ میری کیا ان سی ایسی غلطی ہو گئی, ان کے اوپر تو عذاب آنا ہی تھا, میں نے کون سا ایسا قصور کر دیا, جلدی ہی نکلا تھا نا, اس میں قصور کی کیا بات ہے. تو بہت ساری باتیں کہہ سکتے تھے. جیسے ہم کتنی تاویلیں کرتے ہیں, گناہ کر کے بھی تاویلیں کرتے ہیں کہ میرا کیا قصور, یہ کوئی اتنا بڑا قصور ہو گیا جس کی مجھے یہ سزا مل رہی. اور اگر کوئی بات ہو جائے اپنے اوپر, کوئی مسئلہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں آگے سے, میرے سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا تھا جس کی سزا مل گئی, یعنی میرے سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں, اور بڑا تو بالکل ہی نہیں, چھوڑ دو, تو یعنی اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی ہے, نعوذ باللہ, میرا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. پیغمبر کیا کر رہے ہیں, کیا یہ آپ کو گناہ لگتا ہے؟ لیکن ایک غلطی ہوئی, ایک قصور ہوا, جب اس کے اوپر وہ وہاں پہ ٹریپ ہوئے, قید میں آئے, تو فوراً جھک گئے, قصور مانا, اور پتہ نہیں کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے, کتنی فریادیں کی انہوں نے, تب وہاں سے نکالے گئے. مگر مایوسی نہیں ہے, مایوسی نہیں نظر آتی, عاجزی نظر آتی ہے, رجوع الی اللہ نظر آتا ہے, کہ ایسے مسئلے میں جس کا حل دنیا کے کسی سپر پاور بھی ہو نا, تو وہ مچھلی تک پہنچ کے اس سے کسی انسان کو نہیں نکال سکتی. یہ کوئی دنیا کی قید نہیں تھی, اللہ نے وہاں جا کے قید کیا جہاں پہ کسی کو سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہاں تک کیسے پہنچے. تو کیا آج ہم اپنے مسئلوں میں, چاہے ہمارے گھریلو مسئلے ہیں, کوئی بھی مسئلے ہیں, جب ہم پھنس جاتے ہیں, کیا ہم ایسے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک, اللہ میرا تو کوئی ہے نہیں, کوئی الہ ہے ہی نہیں, تو ہی پاک ہے, مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے, یا ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے میری کیا غلطی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی, ان کی کہانی دیکھیں, شروع سے ذرا دیکھیں, تو موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں, تو کون سے سال میں پیدا ہوئے, جس میں فرعون لڑکوں کو قتل کراتا تھا. اچھا, اب ام موسیٰ جو ہیں بڑی خوف زدہ ہیں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا, ابھی آ کے اس کو مار دیں گے. اب کیا ہونا چاہیے, جب آپ کوئی چیز خطرہ ہو, کسی چیز کو آپ خوف زدہ ہوں, تو ہوتا کیا, انسان کیا کرتا ہے, نیچرلی چھپاتا ہے اس کو, اس کو لے کے بھاگ جائیں, کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کیا الہام فرمایا, دریا میں اس کو ڈال دو. حالانکہ اگر ہم ویسے سوچیں تو یہ بات کوئی ذہن کو سمجھ نہیں آتی, ہائے دریا میں ڈال دے, الٹا اور خطرے میں ڈال دے, وہ تو کہیں چھپانا چاہیے, کسی چیز کے نیچے, کسی جگہ پہ کہیں جا کے چھپ جاؤں, اور الٹا دریا میں ڈال دو. کیا یہ بات پتہ چلتی ہے, جب ام موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا, تو کیا پتہ چلتا ہے اسے, بھروسہ اللہ کے اوپر, اتنا بھروسہ جس کو ہوگا نا کہ میرے خیال سے بہتر, میری پلاننگ سے بہتر اللہ کی پلاننگ ہے. میری پلاننگ کیا ہے, اس کو چھپا دوں, اس کو کہیں رکھ دوں, اس کو کسی کو دے دوں, کوئی لے کے بھاگ جائے, اس سے زیادہ بہتر اللہ کی پلاننگ ہے کہ دریا میں ہی چھوڑ دو جہاں پہ تو اور خطرہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ دریا میں چھوڑ دیا تو وہ ان کے ہاتھوں نہ بھی لگا تو مر جائے گا, یہ تو موت کے منہ میں ڈالنا ہے. لیکن انہوں نے اپنی سوچ نہیں سوچی, انہوں نے کہا جب اللہ کی طرف سے الہام ہو گیا کہ دریا میں ڈالو, تو اب جو اللہ کی پلاننگ وہ میری پلاننگ سے زیادہ اچھی ہے. جو اللہ کے اوپر بھروسہ تھا ان کا, جس ماں کے اندر بھروسہ نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتی, کیسے ڈالوں اپنی اولاد کو اس طرح پانی میں, کہاں چلا جائے گا, کدھر پانی بہا کے لے جائے اس کو. لیکن اتنا ٹرسٹ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر कि पानी में बच्चा डाल दिया। ये ट्रस्ट चाहिए हमें कि अल्लाह मेरी प्लानिंग से बेहतर तेरी प्लानिंग है, मैं जो फैसला करती हूँ उससे बेहतर तेरा फैसला है। जब अल्लाह का कोई हुक्म आ जाता है और मैं सोच रही हूँ कि नहीं इसमें तो ख़तरा है, अगर मैं इस वक्त हिजाब लेके बाहर जाऊँगी इसमें तो ख़तरा है, और अल्लाह कहता है कि नहीं ऐसा ही करो, तो मेरा फैसला मेरी सेफ्टी के लिए जो मेरी प्रिकॉशंस हैं वो बेहतर हैं या अल्लाह तेरा हुक्म बेहतर है? अल्लाह का हुक्म। जिसको अल्लाह पे भरोसा होगा ना वो कहेगा नहीं हुक्म अल्लाह का बेहतर, फैसला अल्लाह का सही, मेरी ख्वाहिश अपनी जगह, मैं अपनी ख्वाहिश पे नहीं चलती, मेरी अकल कह रही है कि ना करो ये ऐसा, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और है। तो जब अल्लाह का फैसला आ जाए तो अपनी अकलें इस्तेमाल ना करो, फिर ये ना सोचो मेरी ख्वाहिश ही है, फिर अल्लाह के फैसले के आगे गिव अप करो, वैसा करके दिखाओ। फिर देखें अल्लाह ताला ने जो प्यारी चीज़ ली, तो इसमें आती है सूरह कसस में, अगर आप ये आयतें जाके देखें तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला तखाफी व ला तहज़नी, तुम ना डरो ना गम करना, ये बच्चा हम तुम्हें वापस ला देंगे। और जब बच्चा वापस ला दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये बच्चा इसलिए वापस लाए ताकि तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएं इससे, हाँ तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाएं। क्या आप सोच सकते हैं एक औरत का रब्बे करीम को इतना ख्याल कि तेरी आंखें ठंडी हो जाएं, तू गम ना कर, तू खौफ ना खा। हमारे पर कोई मसला आता है तो हम सोचते हैं मेरा किसको ख्याल है, अल्लाह भी पता नहीं मुझे भूल गया है, किसी को मेरा ख्याल नहीं, सब मुझे छोड़ गए। ऐसा नहीं, जो रब एक माँ की तड़प के ऊपर उसको ऐसे तसल्ली दे सकता है वो आपके गम को भी जानता है, वो आपके गम का भी एहसास करता है। तो बाज़ दफ़ा जब कोई गम तकलीफ़ आती तो इंसान सोचता है अल्लाह को क्या पता मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, नहीं अल्लाह को पता भी है और वो जानता है कि आप किस चीज़ से गुजर रही हैं। तो एक माँ को अल्लाह ताला ने कैसी वहाँ पे तसल्ली दी, हालांकि एक आम औरत थी हूँ मैं मूसा। और फिर देखो कि जब अल्लाह ताला ने वो प्यारी चीज़ ली तो वापस भी लौटा दी। कभी भी अल्लाह के लिए कुछ देना हो ना तो दिल ना घटाया करें कि पता नहीं चला जाएगा मुझसे, जब अल्लाह लेता है ना तो उससे बेहतर लौटा देता है। अल्लाह ताला ने कैसे करके लौटाया मूसा अलैहिस्सलाम को कि अब अमनो अमान में भी हैं और अब उम्मे मूसा को दूध पिलाने की उजरत भी मिल रही है, सुभान अल्लाह, कोई खौफ ख़तरा भी नहीं है। अगर पहले अपने पास रखती तो कितने खौफ में रहती, दो दिन छुपाती, चार दिन छुपाती, आखिर तो बात खुल जाती। अब बेखौफ व ख़तर और फिरौन से उजरत भी मिल रही, ये होती है अल्लाह की प्लानिंग। उस पे भरोसा करना इंसान सीखे कि अल्लाह जो तू मेरे लिए करेगा ना उसमें मेरे लिए बेहतरी है। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी ताकत दिखाई, अपनी कुव्वत दिखाई, अपनी कुदरत दिखाई कि देखो जिस फिरौन ने कहा कि इन बच्चों को मरवा दो इसलिए कि कहीं कोई मेरे इख्तदार को ख़तरे में ना डाल दे, इन सारे बच्चों को ज़िबा कराओ, सबको ज़िबा कराने का हुक्म क्यों दिया था, मेरे इख्तदार को ना ख़तरा हो, उन्हीं में से एक बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की गोद में पल रहे हैं। ये है रब्बे करीम की कुदरत कि देखो शेर के मुंह में डाल के पाला। जब हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हम पता नहीं क्या क्या तरकीबें करते हैं, तरकीब करने में कोई नहीं हरज, लेकिन बज दफ़ा बहुत उल्टी सीधे काम करते हैं कि इनकी हिफाजत हो, हिफाजत हो। मुहाफिज रब है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल में पलवा दिया ना, वो जो कातिल था जो इस बच्चे को ढूंढ रहा था इसी की तलाश में था, अल्लाह ने उसी के महल में उनको पलवाया। तो अल्लाह ताला हमें इस माहौल में, हमें और हमारे बच्चों को अल्लाह इसी माहौल में रख के वही हिफाजत के साथ पाल सकता है। किसी और की ताकत नहीं थी कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तक पहुँच जाते और वहाँ पे बखरियत पलते। क्या वो रब जो मूसा को फिरौन के दरबार में हिफाजत के साथ पाल सकता है, क्या वो हमें इस माहौल के अंदर हिफाजत के साथ और हमारे बच्चों को हिफाजत के साथ नहीं रख सकता? बेशक रख सकता है, क्योंकि मुहाफिज वो है सिर्फ। हम कितने ही तरीके तरकीबें टोटके क्या क्या कर लें, लेकिन याद रखें हाफिज अल्लाह की ज़ात है, वो हमारे बच्चों का हाफिज और हमारा हाफिज। उस रब से मांगा करें कि या अल्लाह तूने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को हिफाजत के साथ फिरौन के महल में रखा और वहाँ उनकी परवरिश फरमाई। या अल्लाह तू हमें इस माहौल में ईमान के साथ और हिफाजत के साथ उसी तरह रखना और हमारे बच्चों को। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं फिरौन के दरबार में, और उस जाने से पहले जब अल्लाह ताला उनको नबूवत देते हैं, सबसे पहली जो बातचीत अल्लाह ताला की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ होती है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ मूसा ये तेरे हाथ में क्या है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, या रबी आसा है मेरा, और इससे मैं पत्ते वगैरह भी झाड़ता हूँ और इससे मैं टेक लगाता हूँ सहारे के लिए। तो मुफसरीन कहते हैं कि उन्होंने सहारे पे भरोसा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मूसा इसको फेंक नीचे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका तो क्या हुआ, वो सांप बन गया। क्या पता चला इससे, वही अभी आसा था जो सहारा बन रहा था, वही नीचे फेंका तो सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम भी खौफजदा हो गए। इससे ये पता चला कि आसा भी इंसानों की तरह है, जैसे इंसान होते हैं ना इसी तरह आसा है। इन्हीं इंसानों में से अल्लाह चाहे तो किसी को आपके लिए सहारा बना दे, और इन्हीं इंसानों में से अल्लाह किसी को चाहे तो आपके लिए सांप बना दे जो आप ही को डस ले। ये इख्तियार किसका है, रब का। असा अच्छा नहीं है कि असा सहारा बनता है, वही असा देखो सांप बन गया, वही असा उठाया तो फिर असा बन गया, सांप को उठाया असा बन गया था ना। तो क्या क्वालिटी किस में है, असा में नहीं, वो रब है जो चाहे उसमें फायदा दे दे और जो चाहे तो उसी में नुकसान दे दे। वही चीज़ आपके लिए जहर बन जाए और वही चीज़ आपके लिए दवा का काम कर जाए, वो अल्लाह को पता है। बाज देखें दवाएं इंसान के लिए कैसा रिएक्शन कर लेती हैं, वही किसी के लिए दवा होती है, शिफा हो जाती है, अल्लाह ताला उसमें शिफा डाल देता है। वही आप खाते हैं एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। फ़र्क क्या है, दवा का फ़र्क नहीं है, वो रब का फ़र्क, रब फ़र्क डालता है। आपको जो लोग लगते हैं ना कि ये मेरा सहारा है, इनके बगैर नहीं मैं रह सकती, ये मुझे फ़ायदा देते हैं, ये उनको सहारा बनाया किसने है, उस रब ने। वही रब चाहे ना तो कल को वो पलटा खा जाए, ये इंसान का मिजाज है, कल वो पलट जाए और आप ही को नुकसान देने वाले बन जाए, आप उन्हीं की बातों से फिर हर्ट होने लगते हैं। तो कौन ये कुदरत रखता है कि उसको फ़ायदा बनाने वाला बना दे, नफ़ा देने वाला बना दे या नुकसान देने वाला, वो मेरा रब है। तो भरोसा असबाब पे नहीं, भरोसा चीज़ों या इंसानों पे नहीं, भरोसा उस रब पे करो और उससे मांगो कि अल्लाह इस बंदे को मेरी नफ़ा मंद बना दे, अल्लाह इसके शर से मुझे महफूज रख दे। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम जब जाने लगे हैं तो अल्लाह ताला ने हिदायत क्या फरमाई, मूसा अल्लाह का जिक्र ना भूलना, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और क्या साथ लेके जाओ, अल्लाह का जिक्र। की ये दे दी चाबी कि इतने बड़े फिरौन के बादशाह सुपर पावर के पास जा रहे हो, जिक्र इलाही को ना भूलना, ये तुम्हारा साथ देगा और अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो हदीस में क्या है, अल्लाह उसके साथ होता है। तो आप जब ज़िंदगी के अंदर मसलों में पड़े तो अल्लाह का जिक्र नहीं भूलना। आपके पास कोई ऐसे कौमें या कोई ऐसे लोग या कोई ऐसे बंदे हैं जिनसे आपको लगता है कि इनसे हमें शर पहुंचेगा, मुसलमानों को इनसे अल्लाह महफूज रखे, इनसे शर का हमें अंदेशा है, अल्लाह ताला चाहे तो हमारे लिए उन्हीं को फ़ायदा मंद बना दे आसा की तरह, और अल्लाह चाहे तो उन्हीं के ज़रिए कोई शर पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह तू तेरे पास कुदरत है, तू इसी के शर को मेरे लिए खैर बना सकता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी कौम के पास गए, सारा मुख्तसरन किस्सा, वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम कौम को लेकर निकल खड़े हुए मिस्र से। आगे क्या है, रेड सी, पीछे क्या है, फिरौन का लश्कर। अब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, लोग उनकी कौम कह रही है मूसा तुम हमें ये कहाँ ले आए, हाय तुमने तो हमें फंसा दिया। अब देखें ऐसी जगह पे आके फंस गए, और ज़िंदगी में हमारे साथ भी ऐसे कई दफ़ा सिचुएशंस होती हैं, समझ नहीं आती आगे जाएं कि पीछे जाएं, हम कैसे स्टक हो गए, कैसे फंस गए, कोई राह दिखाई नहीं दे रही होती। अब जिस जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर खड़े हुए हैं कोई रास्ता नहीं है। वो जिसको मुहावरे को कहते हैं ना, वो बिटवीन द डेवल एंड द डेड सी कहते हैं ना, वो ही हाल हो गया ना कि भाई आगे समुद्र, ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे का। अब लोग परेशान हैं, लेकिन अल्लाह ताला के जो चुने हुए बंदे होते हैं वो अल्लाह के पर तब भी भरोसा नहीं छोड़ते। उस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं सूरह शुरा में, अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, बेशक मेरे साथ तो मेरा रब है, वो मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएगा, वो अनकरीब मुझे रास्ता दिखाएगा। रास्ता मूसा अलैहिस्सलाम को नज़र आ रहा था क्या? कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। क्या बात कर रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाएगा, यहाँ पे तो कोई रास्ता नहीं है। हम अपनी अकलों से सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं कोई रास्ता है ही नहीं, हाय जिस मुश्किल में मैं फंस गई हूँ ना, इससे निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं, हमारे मसले का तो कोई हल है ही नहीं। क्या आप क्या के देखते हैं ये, इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, मैं मसले में तो हूँ, मुझे चाहे रास्ता नज़र ना आए लेकिन मेरा रब मेरे साथ है ना, वो ज़रूर मुझे रास्ता दिखाएगा। अब हमने तो आज पढ़ लिया कि समुंदर फट गया, उनको तो नहीं उस वक्त पता था, वो तो वहाँ पे खड़े में अब क्या होगा, मगर भरोसा, इतना ब्लाइंड फेथ है अल्लाह ताला के ऊपर, ऐसा भरोसा है कि वो कह रहे हैं रास्ता ज़रूर कोई निकलेगा। अब कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, इसकी परवाह नहीं, ये उनकी सोच है ही नहीं, ये सोचने की उनको ज़रूरत ही नहीं, वो अल्लाह का काम है कहाँ से रास्ता निकाले। वो जो इंसानी तौर पे इम्पॉसिबल चीज़, अल्लाह ताला ने कैसे फरमाया, ए मूसा अपना आसा मार, आसा मारा और समंदर फट गया। क्या आसा में ताकत थी कि वो समंदर को फाड़ दे? नहीं थी ताकत। फिर अल्लाह ताला ने क्या समझाया, आसा तो नहीं फाड़ सकता। अल्लाह ने समझाया कि कोशिश तुमने करनी है, समंदर वैसे भी तो फट सकता था, आसा की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अल्लाह ने दिखाया कि कोशिश तुम करोगे ना फिर मदद आएगी, तुम आसा मारोगे तो समंदर फटेगा। हार आप जा के आसा कितने मारते रहे, सारे मिलके मारें कोई समंदर नहीं फटना, वो कैसे फट गया? वो रब ने ये इज़न किया, कौन फरमाया तो उससे फटा, लेकिन तुम्हारी कोशिश ज़रूरी है, तो तुम कोशिश ना छोड़ो। हाँ रब की तरफ से रास्ता मिलेगा, लेकिन उसके पीछे क्या होना चाहिए, तुम्हारी कोशिश। हम क्या करते हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, वो ऊपर से ही आएंगे, कोई फरिश्ते आगे करेंगे, नहीं कोशिश फिर भी तुम्हें ही करनी है। आसा तुमको मारना है तब समंदर फटेगा, तब रास्ता निकलेगा, तब अल्लाह तुम्हें दिखाएगा ये है सलूशन। कोशिश करो, असबाब इख्तियार करो। फिर हम देखते हैं आगे स्टोरी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, बड़ी ख़ूबसूरत उनकी भी स्टोरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब देखते हैं, हमने देखा कि उनको कैसे, उन्होंने अपने लोगों को कैसे तबलीग की, दावत दी, उन्होंने सितारे को देखा, फरमाया ये मेरा रब है। अच्छा आपने सब ने ये स्टोरी सुनी, अच्छा वो डूब गया, फरमाया ना डूबने वाले तो मेरा रब नहीं हो सकते, चाँद को देखा इसी तरह फरमाया, सूरज को देखा इसी तरह फरमाया। ये क्या सिंबलाइज़ करता है कि इंसान हर चमकती हुई चीज़ को देख के सोचता है बस ये मेरा सहारा है, बस यही खुदा है, इसी के ऊपर मैं डिपेंड करूँ। हालांकि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हाँ वो चमक तो रही हैं, लेकिन हर एक चमकती चीज़ को भी जवाल है। आप किसी पे भी भरोसा कर लेंगे ना, उसको भी जवाल है, सिवाय उस एक रब की ज़ात के। जितनी चीज़ें इस कायनात में, वो कितनी बड़ी नज़र आएँ, कितनी रोशन नज़र आएँ, कितनी ही चमकती हुई नज़र आएँ, वो चाहे सूरज ही क्यों ना हो, अल्लाह ने सूरज को भी डबो के दिखा दिया कि सूरज भी एक दिन डूब जाता है। तो तुम जिन पे भरोसा करते हो वो तो डूब जाएंगे, तुम कहते इसका सहारा पकड़ लूँ, उसका सहारा पकड़ लूँ, उसका सहारा पकड़ लूँ, तुम अल्लाह का क्यों नहीं पकड़ते? वो है जो ज़ात कभी जवाल का शिकार नहीं होगी, बाकी सब डूब जाने वाले हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस इम्तिहान में डाला कि आग सामने जल रही है और पूरी बस्ती खड़ी हुई है, पूरा शहर खड़ा है, एक एक बंदा वहाँ पे मौजूद है, अपना बाप भी वहाँ पे है, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सपोर्टर हो, जो उनकी साइड लेने वाला हो, जो उनकी तरफ हो। सब मुखालिफ हैं और आगे इतनी बड़ी आग है, अब इस वक्त कौन बचाएगा? फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं कि आपको मेरी कोई मदद की ज़रूरत है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अम्मा इलैका फला, अगर तुम पूछ रहे हो कि तुमसे, तो नहीं, तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। तौहीद का आला तरीन सबक, ये पैगंबर ही कह सकते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, हमारे जैसा कोई हो तो कहेगा कि मदद का क्या पूछते हो, बचाओ मुझे यहाँ से भाई, पूछने की क्या बात है, देख नहीं रहे कि मैं कितनी सिचुएशन में हूँ? कह रहे नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। अब ऐसा रिस्पॉन्स मुश्किल हालात के अंदर देना कि मुझे नहीं कोई भी चाहिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए तो अल्लाह ही काफ़ी है, यानी मुझे कोई सहारा चाहिए ही नहीं। क्या फरमाया था कि अगर अल्लाह मुझे जलाने पर राज़ी है तो मैं जलने पर राज़ी हूँ, राज़ी बरज़ा, अल्लाह मैं तुझसे राज़ी हूँ। क्या ज़िंदगी में, जब हमारी ज़िंदगी में अल्लाह माफ़ करे ऐसी फ़िज़िकल आगे तो नहीं, लेकिन मसले मसाइल की आगे, झगड़ों की आगे, ताने और फितनों की आगे, ये भी तो आग हैं, जब ये आगें ज़िंदगियों में लगती हैं तो क्या हम भी कहते हैं मुझे कोई भी सहारा नहीं चाहिए, मुझे एक सहारा काफ़ी है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ये हस्बी अल्लाह वही कह सकता है जो ये जानता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह एक तरफ, सारी खुदाई सारी मखलूक मिल जाए वो एक तरफ, एक रब की ज़ात है जो मुझे चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। जैसे वो है ना, क्या डर है जो सारी खुदाई भी हो मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए हो, मुझे एक खुदाई काफ़ी है, मुझे और किसी का भी सहारा नहीं चाहिए। तो अब आग अल्लाह ताला ने उसको बना दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामा, ए आग ठंडी भी हो जा और सलामती वाली भी हो जा। कभी आपने सोचा कि जो हमारी ज़िंदगियों में आगें लगी हुई हैं इनको ठंडा करने वाला कौन है? वो रब है, इनको भी वही रब ठंडा करेगा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडा किया और सलामती वाला बनाया। जिन मसलों में हम हैं इन आगों को भी सलामती वाला बनाने वाला सिवाय उस रब की और कोई ज़ात नहीं। चाहे हमें कोई भी ना नज़र आए, वो भी ना ही अब मुझसे बात करती, वो भी नहीं मेरी सपोर्टर, वो भी नहीं मेरा साथ देती, मेरी ना कोई दोस्त है, ना मेरा कोई हिमायती है, ना मेरा कोई है यहाँ पे सहारा, तो वो सहारा है ना, जब वो एक अकेला काफ़ी है, हस्बी अल्लाह काफ़ी है मुझे वो एक अकेला, तो फिर और किसी की क्या ज़रूरत है? क्या उसको माँ की ज़रूरत है, कोई बच्ची की ज़रूरत है, कोई सहेली की ज़रूरत है जो साथ होगी तो फिर आपका काम होगा? नहीं, वो अकेला काफ़ी है, उस अकेले की ताकत काफ़ी है। जब उसकी ताकत मेरे साथ हो गई तो मुझे नहीं कोई चाहिए। वो बेहतरीन वकील है, बेहतरीन कारसाज है। तो जब हमारी ज़िंदगी के जो मसले हैं, जो आपस के झगड़े हैं, जो आपस में फसाद हैं, जो घरों में फितने फसाद हैं, या जो दुनिया में आग लगी हुई है, उसमें भी यही कहें हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। और जब तक ये यकीन नहीं आ जाएगा ना कि बस एक अल्लाह ही काफ़ी है, उस वक़्त तक नहीं आगे बुझ सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कलमा कहा तो अल्लाह ने कैसे, देखो उसको, उस आग को ही ठंडा कर दिया। वो ना उन लोगों को सपोर्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी कि अब इन लोगों के दिल बदले जाएँ, ये सपोर्टर बने, आए कोई हामी है मेरा यहाँ पर या नहीं, आए मेरा कोई है देखने वाला या नहीं, नहीं, वो रब देखो उस आग को ही कैसा बना देगा। इसी तरह जो आपके मसले हैं ना, उनके अंदर रहते हुए भी आप ठंडे फील करेंगे, अंदर आपके अंदर ठंडक होगी, वो आग अंदर को जलाएगी नहीं, वो आग बरदम व सलामा हो जाएगी। इसीलिए आपने कुछ अल्लाह वालों को देखा ना, इतने बड़े बड़े मसले भी होते हैं, वो कूल होते हैं, काम होते हैं, ठहरे हुए होते हैं, क्यों? हस्बी अल्लाह, ये है जो उनको थामता है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है ना। और तब भी कोई मायूसी नहीं है, देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी में, क्योंकि जिनका भरोसा अल्लाह के ऊपर हो जाए फिर वो मायूस नहीं हुआ करते। जो जानते हैं ना अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी है, उसकी कुदरत कितनी बड़ी है, वो क्यों मायूस होने लगे, वो क्यों दुखी होने लगे? उनको पता है अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा ना। और भरोसा, कैसा भरोसा था उनका, जैसे बाज़ लोगों ने भरोसे को बड़ा खूबसूरत डिस्क्राइब किया कि अल्लाह के ऊपर भरोसा ऐसे करो जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दा, उसको जब गुसल देते हैं तो वो गुसल देने वालों के हाथों में कैसा हो जाता है, जिधर मर्जी चाहे पलटाएं, चाहे बिठाएं, चाहे लिटाएं, कोई शिकायत करता है, कुछ बोलता है, कुछ कहता है, कोई डिमांड करता है, आए तुमने यहाँ से क्यों टेढ़ा पकड़ लिया, आए कंघी नहीं सही की, आए बाल क्यों खींचे, कुछ कहता है, बस वो वैसे ही मुड़ता जाता है जैसे गुसल देने वाला उसको मोड़ता जाता है। इसी तरह तुम अल्लाह के हाथों में हो जाओ, जिधर को मोड़े उधर को मुड़ जाओ, जो करे तुम्हारे साथ तुम उसकी रज़ा में राज़ी रहो, और वैसे मुड़ते चले जाओ, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला, ना कोई डिमांड। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो तवक्कल का खैर आला तरीन मकाम है, रुजू इल्लाह का। अब जब बूढ़े हो गए, अल्लाह ताला ने औलाद दे दी इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में, तो उसके बाद क्या ख्वाब दिखाया कि इसको ज़िबह कर रहे हैं? क्या अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कुर्बानी लेनी थी इस्माईल अलैहिस्सलाम? क्या नऊज़ु बिल्लाह उनको कोई अल्लाह ताला ने ख़त्म करना था, उनको अल्लाह ताला को कोई नऊज़ु बिल्लाह कोई प्यारे नहीं थे? ऐसा कुछ भी नहीं। क्या अल्लाह ने जान लेनी थी उनकी? जान भी नहीं ली। क्यों फिर इस कुर्बानी को देने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसे इम्तिहान में क्यों डाला अल्लाह ताला ने? सोचा आपने कभी कि जब अल्लाह ने जान भी नहीं लेनी इस्माईल अलैहिस्सलाम की, जब कुछ भी नहीं करना उनको, कोई इतना सा उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, तो क्या करना था? क्यों ली फिर, किस क्यों इस इम्तिहान में डाला? आजमाइश में तो डाला, क्यों डाला? यही तो पूछ रही हूँ, क्यों डाला? ए इब्राहीम, प्रूव इट दैट यू लव अल्लाह मोर देन योर सन, प्रूव इट। एक ऐसा बेटा मैंने क्या कहा है, जो बुढ़ापे में मिला, इकलौती औलाद, इतने दिन के बाद एक सहारा, जिसको हम सहारा बोलते हैं, एक सहारा। अल्लाह ताला ने अब यह आजमा के देखना था, इब्राहीम खलीलुल्लाह ऐसे ही तो नहीं बन गए। तौहीद क्या चीज़ है कि सब मोहब्बतों से ऊपर अल्लाह की मोहब्बत। ये भी शिर्क है कि इंसान किसी और को अल्लाह से ज़्यादा चाहे। जो मोहब्बत भी मेरे रास्ते की रुकावट बने, क्या तुम उस मोहब्बत को मेरे लिए कुर्बान कर सकते हो या नहीं? दिखाओ पहले, कुर्बानी दे सकते हो? ये अटैचमेंट, हम कभी कहीं अटैच्ड हैं, कभी कहीं अटैच्ड हैं, कहीं औलाद के साथ, कहीं माल के साथ, कहीं घरों के साथ, ये अटैचमेंट कहीं अल्लाह के रास्ते की रुकावट तो नहीं बन जाती? ए इब्राहीम, कुर्बानी दे के दिखाओ, तो पता चले कि बेटे से ज़्यादा प्यार है कि अल्लाह से। और उन्होंने बेटे को नहीं कुर्बान किया सिर्फ, उन्होंने ये दिखाया कि अल्लाह कोई चीज़ तेरे रास्ते में आ जाए, बेटा क्या चीज़ है? सबसे प्यारी चीज़ तो बेटा होता है ना, घर बीच सब, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला रहम फरमाए सब पे। किसी का बेटा बीमार हो जाए तो क्या कहेगा कि मैंने पैसे नहीं खर्च करने? हर चीज़ पानी की तरह बहा देगा, क्योंकि औलाद इतनी प्यारी होती। और ये इकलौता बेटा, उससे बढ़ के कोई चीज़ हो सकती? अल्लाह ने वो जो सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है उसकी कुर्बानी को डिमांड किया था। तो बाकी तो सब चीज़ों की मोहब्बत उससे नीचे है, बाकी तो फिर कोई चीज़ रह ही नहीं जाती। ये ऐसी चीज़ है जो इंसान कहता है कि मेरी अपनी जान भी चली जाए। वो एक बादशाह था, उसने कहा, मरने लगा मुग़ल बादशाहों में से, तो उसने कहा अल्लाह से दुआ की, सॉरी इसका बेटा मरने लगा, तो उसने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी इसको दे दे। इंसान ये कहता है कि मेरी जान भी, मेरी औलाद को, मेरी ज़िंदगी भी लग जाए। तो कहाँ ये कि अपने बेटे की कुर्बानी खुद अपने हाथ से करना। तो उन्होंने साबित कर दिया कि अल्लाह कोई मोहब्बत तेरी मोहब्बत से ऊपर नहीं हो सकती। ये साबित कर दिया अल्लाह, आई लव यू मोर। जब हमारे सामने चीज़ें आती हैं, हमारी कई ख्वाहिशात होती हैं, कई मर्जियाँ होती हैं, और अल्लाह का कोई फ़ैसला आ जाता है इसको कुर्बान कर दो, मेरा तो दिल ये चाह रहा है, मैंने कुरान में पढ़ लिया, अच्छा अल्लाह ताला का तो हुक्म है कि ये नहीं करना काम, तो कोई भी काम हो सकता है, हर एक अपना सोच सकता है। अल्लाह का तो हुक्म है कि यहाँ पे नहीं चलना, इस रास्ते पे नहीं चलना, तो मैं कितनी दफ़ा अपनी ये ख्वाहिश, एक ख्वाहिश ही है ना, बेटा नहीं है, एक वो ख्वाहिश है, कितनी दफ़ा उस ख्वाहिश के ऊपर छुरी चलाती हूँ कि नहीं ये ख्वाहिश कुर्बान अल्लाह के रास्ते में। नारे तो हम बहुत लगाते हैं अल्लाह के लिए, बस ये भी कुर्बान और वो भी कुर्बान और मेरी जान कुर्बान और क्या नहीं कुर्बान, हम करने को तैयार। बात तो तब पता चले तुम तो अपनी एक ख्वाहिश भी नहीं कुर्बान करते। कितने मुतालबे अल्लाह तुमसे करता है, जो कुरान है वो क्या है, रब की बात है ना, अल्लाह तुमसे डिमांड कर रहा है, वो तुमसे मुतालबा कर रहा है ये करो, तुम कहते नहीं जी मेरी मर्जी नहीं है, मुझे नहीं है, मुझे नहीं ये समझ आती, ये नहीं मुझे अच्छा लगता, मेरी मर्ज़ी तो ये है। हम कितनी दफ़ा अपनी ख्वाहिशात के ऊपर छुड़ियाँ चलाते हैं और उनको ज़िबा करते हैं अल्लाह की खातिर। अल्लाह ताला इसी तरह हर एक का इम्तिहान लेता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो हुआ ना, अल्लाह हर एक का इम्तिहान लेता है, कभी ना कभी उस पर वो सिचुएशन ज़रूर आती है ज़िंदगी में, बाज़ दफ़ा बार बार आती है कि अल्लाह देखना चाहता है तुम्हें किससे ज़्यादा मोहब्बत है, मुझसे या इस चीज़ से, या अपने इस शौक़ से, या अपनी इस मर्ज़ी से, या अपनी इस ख्वाहिश से। फिर आप क्या साबित करके दिखाते हैं कि अल्लाह मुझे आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ये अल्फाज नहीं होते, ये अमल करके दिखाना होता है, मोहब्बत सबूत चाहती है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह सबूत दिया। क्योंकि इंसान ज़िंदगी में रिश्ते भी हैं, माल भी है, बहुत सारी चीज़ें जिससे, जैसे मैंने कहा, अटैचमेंट हो जाती है, और उनमें इतनी उनकी मोहब्बत में आगे निकल जाता है कि अल्लाह से गाफिल हो जाता है। तो अल्लाह ताला फिर कभी कभी उनकी कुर्बानी मांगता है, या कभी कहता है कि इनको छोड़ो, या कभी उनसे वो चीज़ ले लेता है कि तुम गफलत से निकलो। मसलन आप ये समझें ऐसे कि आपका बच्चा मसलन वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन हो, अब वो वीडियो गेम दिन रात खेलता रहता है, दिन रात खेलता रहता है, ना पढ़ाई करता है, ना कुछ खाना खाता है, ना रात को सही सोता है, बस वीडियो गेम पे लगा रहता है। तो आप क्या करेंगे, एक और बाजार से वीडियो गेम लाके उसको दे देंगे? नहीं करेंगे ना, क्या करेंगे, वो वाली भी उठा के छुपा लेंगे। अब वो बच्चा रोता है कि मुझे वही चाहिए, लेकिन आप नहीं देते, क्यों? आपको उसकी भलाई चाहिए ना, आप ये चाहती हैं कि वो इस गफलत से निकले। इसी तरह जब अल्लाह ताला देखते हैं कि कोई इंसान किसी गैरुल्लाह की मोहब्बत में, वो गैरुल्लाह कोई भी हो सकता है, चाहे औलाद है, रिश्ता है, माल है, स्टेटस है, कुछ भी, इसमें इतना बढ़ता जा रहा है कि अपने आप को नुकसान दे रहा है, ये अल्लाह को भूल गया, तो अल्लाह ताला उससे थोड़ी देर के लिए ऐसे खींच लेते हैं ताकि वो वापस अल्लाह की तरफ आ जाए। वो लेने नहीं लगा, उसने लेके रख नहीं लेना, वो तुम्हारी भलाई के लिए कि तुम गफलत से निकलो, तुम अल्लाह के करीब आ जाओ। और हर वो मसला, हर वो परेशानी जो आपको तहज्जुद में जगा दे, जो आपको नवाफिल पढ़ने के लिए, जो आपको दुआएं करने के लिए, जो आपको सज्दों में जाके रुलाए, वो मसला तो शर में खैर है, इसलिए कि उसने आपको अल्लाह से करीब कर दिया, वो तो वर्थ है। वो आपने नहीं सोचा कि क्या मसला मुझे मिला, लेकिन उससे मुझे खैर कितनी बड़ी मिल गई, अल्लाह की कुर्बत से बड़ी क्या चीज़ हो सकती है, इससे भी बड़ी कोई चीज़ हो सकती है? पता नहीं कितनी कुर्बत मिल गई हो आपको, शायद आपको वो मसला ना आता तो कभी आप रात को उठते ही ना अल्लाह के आगे रोने के लिए, शायद वो मसला ना आता तो आप इतना अल्लाह का जिक्र करते ही ना जितना कि आप दिन रात कर रहे हैं, शायद वो मसला ना आता तो आप नमाजों में इतना खुशू ही ना रखते जितना आप रख रहे हैं। तो वो मसले भी अल्लाह इसलिए भेजता है, तुम गाफिल हो गए थे ना अल्लाह से दूर हो गए थे, अल्लाह तुम्हें अपने पास करना चाहता है। तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी बेटा लिया नहीं, वापस दे दिया, बस वो तो एक आजमाइश थी कि इब्राहीम दिखाओ आप। इसी तरह अल्लाह किसी की भी कोई चीज़ नहीं रखता, वो दे देता है, कभी दुनिया में और कभी आखरत में उससे भी बढ़ के मकाम दे देगा। फिर आप कहेंगे कि हाय काश दुनिया के अंदर तो मुझे कुछ मिलता ही ना, सब कुछ यहीं मिल जाता, काश वहाँ पे तो कोई दुआ वहाँ की कबूल होती ही ना, सब यहाँ पे ही मिल जाता। तो ये तो वहाँ पे जाके जब असलियत पता चलेगी तो सामने आएगा ना। फिर देखें बीवी भी कैसी मिली, बीबी हाजरा, कि क्या है उनका भी तवक्कल अल्लाह के ऊपर कितना ज़्यादा था कि जब शौहर जा रहे हैं सवारी पे और एक छोटे से इतना नन्ना सा बच्चा जो दूध पीने वाली उम्र का बच्चा है वो छोड़े जा रहे हैं, उस वक़्त बीबी हाजरा की ज़ुबान पे भी क्या था, हस्बी अल्लाह व निमल वकील। तो अल्लाह ताला ने मर्दों को तो आज़माया है, औरतें कहती हैं हम तो बड़ी कमज़ोर हैं, अल्लाह ने एक औरत पे भी ऐसी आजमाइश डाली, बिल्कुल तने तन्हा, जहाँ पे दूर दूर तक ना कोई आबादी का निशान, ना कोई बंदा बशर नज़र आ रहा। उस वक़्त उनका भरोसा अल्लाह पे था तो रही ना, वरना वो कहती कि मैं तो नहीं यहाँ पे रह सकती। पता है कि ऐ अल्लाह अगर तूने ये आजमाइश डाली है तो तू हमें ज़ाया नहीं करेगा। ये जानती हैं कि अल्लाह तू फिर ज़ाया नहीं करेगा। उसके बाद उनकी भी उस्वा से हमें क्या पता चलता है, जब बच्चा प्यास से बिलबिला रहा है तो दौड़ रही हैं सफा और मरवा पे। कितनी दफ़ा दौड़ी? 7 चक्कर लगाए। क्यों? एक दफ़ा क्या जाके नहीं पता चला था कि पानी नहीं है? पता चला था ना, फिर क्यों दौड़ी इतना? अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं है, अल्लाह निकालेगा कोई रास्ता, अल्लाह निकालेगा। फिर गई हैं वहाँ पे और कोशिश कोशिश नहीं छोड़ी कि अब बच्चे के पास बैठ जाए, मरने को तैयार हैं हम। नहीं, कोशिश करते जाओ, कोशिश करते जाओ। तुम्हारा काम क्या है? कोशिश करना है उम्मत। तुम हाथ तोड़ के क्यों बैठ गए हो? बस अल्लाह ही कुछ करेगा, पैगंबर आ जाए, गैब से अल्लाह तू मदद भेज दे, फरिश्ते उतर आए। हम इन ख्वाहिशात को लेके बैठे हुए और ये उम्मीद रखे हुए कि फरिश्ते उतरेंगे और गैब से अल्लाह तू गैब से मदद कर सकता है, तू फरिश्ते उतार, तो हमने कुछ नहीं करना, हमारे हाथ पैर टूटे। नहीं, बीबी हाजरा भी दौड़ रही हैं और एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, दौड़ती ही चली गई जब तक पानी नहीं निकल आया। 7 चक्कर लगा दिए और अल्लाह चाहता तो उनकी दौड़ के बगैर ही वहाँ पे जमजम निकाल देता। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल था तो 7 चक्कर क्यों लगवाए? ये ही बताने के लिए उस उम्मत को कि कोशिश जारी रखना, नतीजे पे नहीं तुमने देखना, तुम्हारा काम है कोशिश 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 और अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होना। उम्मीद थी तो भागी ना, अगर उम्मीद ख़त्म हो जाती तो क्या इंसान भाग सकता है? अल्लाह से उम्मीद थी, अल्लाह राह निकालेगा और अल्लाह ने रास्ता निकाला, लेकिन कोशिश के बाद। समंदर फटा तो असा मारने के बाद कोशिश तुम पहले करो, फिर अल्लाह के ऊपर भरोसा करो और फिर देखो अल्लाह क्या नताइज निकालता है। फिर अगला हम देखते हैं किस्सा आले इमरान में है, उम्मे मरियम का। क्या किस्सा है उसमें कि इमरातो इमरान, इमरान की जो बीवी हैं, उन्होंने नज़र मानी जबकि अभी एक्सपेक्ट कर रही थी, उस वक़्त ही नज़र मानी कि अल्लाह जो मेरे पेट में है मैं तेरे रास्ते में इसको वक्फ करती हूँ। यानी हमें क्या इससे पता चलता है कि देखो जिनको उम्मीद है आगे औलाद की, या जिनके आगे पोते नवासों की उम्मीद है, वो जब अभी पैदा होने के बाद नहीं, जब अभी पेट में बच्चा है ना, तभी से इस तरह की नियत कर लें कि अल्लाह तेरे रास्ते में इसको निकालूंगी, अल्लाह तेरे दीन की खिदमत के लिए इसको वक्फ करूंगी। ये नहीं कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको ये दीन सिखाएं। उस वक़्त से दुआएं, उस वक़्त से नियत, उस वक़्त से इरादे कि अल्लाह तेरे दीन की खिदमत करें। फिर हुआ क्या, उम्मे मरियम की प्लानिंग ये थी कि ज़ाहिर ही बात है लड़का ही होगा तो वो करेगा दीन की खिदमत, लड़की कैसे कर सकती, ये तो उलट हो गया। अल्लाह की प्लानिंग कुछ और थी, उनकी प्लानिंग कुछ और। तो आप तो वो मायूस होकर बैठ जाती, ये क्या फ़ायदा हुआ, मैंने तो अल्लाह के लिए वक्फ करने का कहा था, क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, लेकिन हमें ये किस्सा क्या दर्स देता है कि एक है अल्लाह की प्लानिंग और एक है इंसान की प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग नहीं भी चलती तो खैर यकीन रखें इस बात में है जो अल्लाह प्लान करता है। क्या उसमें खैर नहीं थी? बिल्कुल खैर थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा ज़करु कल उनसा, लड़का तो वो काम कर ही नहीं सकता था जो लड़की ने करना था, अल्लाह ने जो उससे काम लेना था। अब वो कह रही है या अल्लाह ये तो बेटी हो गई, अब मैं क्या करूँ, और अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं बेटा तो लड़का होता तो वो बात ही नहीं थी जो बेटी की बात है। तो अल्लाह ने तुम्हें बेटी एक मकसद के लिए दी कि वो औरत फिर तमाम जहान की औरतों की सरदार बनी, तमाम जहान की औरतों के ऊपर अल्लाह ने उनको चुन लिया। वो थी जिससे अल्लाह ने ये मौजज़ा दिखाना था कि रहती दुनिया तक हज़रत मरियम का नाम चले। क्या कोई लड़का ये काम कर सकता था? नहीं, मगर ये बात वही यकीन से कह सकता है कि जो भरोसा रखता हो कि मेरे रब जो तेरी हिकमतें हैं, जो तेरे फैसले हैं ना, चाहे मुझे समझ ना भी आए। अब उनका बेटा हो भी जाता तो कितनी खिदमत कर लेता, क्या रहती दुनिया तक नाम रहना था? वहाँ पे तो और भी बड़े सारे मजावर और बहुत सारे खिदमत गुजार थे बैतुल मकदस के, किसी का नाम आपको पता है? नहीं पता, मगर हज़रत मरियम का नाम अल्लाह ने ज़िंदा रखा। तो वो बेटी जो थी उसमें कितनी खैर थी, वो माँ को भी नहीं पता था लेकिन अल्लाह के फैसलों पे जो भरोसा करता है, उसको समझ ना भी आए ना तो वो कहता है कि नहीं, इसमें खैर ही खैर है, मेरा भरोसा अल्लाह पे है, जो अल्लाह ने फैसला किया क्या उसमें ना खैर हो? ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें खैर ही खैर है। फिर देखें, पैदा होते ही बच्चे को क्या कह रही हैं, इन्नी औईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैं इसको भी और इसकी औलाद को भी, अभी बच्ची पैदा हुई है, उसकी औलाद का क्या आगे निशान का कभी सोचते भी नहीं है, इसको भी और इसकी औलाद को भी शैतान से अल्लाह तेरी पनाह में देती हूँ। क्या पता चलता है, इंसान जितने भी पापड़ बेल ले वो हिफाजत नहीं कर सकता, हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे है, हिफाजत उसके हाथ में दे, अपने बच्चों को उसके हाथ में दे, और बाद में नहीं उस वक्त से दें जब बच्चा पैदा हो जाए। क्या अल्लाह, शैतान तो दुश्मन है, अल्लाह इससे अपनी पनाह में ले ले उस वक्त से। हालांकि बच्ची ने क्या करना, अभी तो कोई शैतान के वसवसे नहीं है, अभी तो बच्ची पैदा हुई है, हम तो उस टाइम पे ये सोचते भी नहीं है कि हमें ये दुआ करनी चाहिए, उस वक्त से इन दुआओं को सामने रखें। फिर देखो वो बच्ची कैसी है और उसका भरोसा कैसा है अल्लाह ताला पे, कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम आके उसके वहाँ पे मेहराब में देखते हैं कि क्या रिस्क है, तो पूछते हैं कि ये कहाँ से आया रिस्क है मरियम, तो क्या फरमाती हैं, इन्नल्लाह यरज़ुकु मन यशाउ बिगैरी हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है रिस्क देता है बगैर हिसाब के, तो ये तो अल्लाह की तरफ से है। जब उन्होंने ये कहा तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को तब ख्याल आया कि मैं भी क्यों ना अपने लिए मांगूं अल्लाह से औलाद, तब उन्होंने अल्लाह ताला सूरह आले इमरान में फरमाते हैं हुनालिका दा ज़करिया, उस वक़्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ मांगी। एक औरत भी कितनी बड़ी पाकीज़ा और कितनी बड़ी फ़कीहा हो सकती है, इसमें मर्द और औरत की कोई बात नहीं, कि एक औरत ने पैगंबर को बता दिया ये दर्स कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो बग़ैर हिसाब के दे सकता है, और वो वहाँ से देगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। उस वक़्त ज़करिया अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से, और फिर दुआ करते हैं तो दुआ भी कर ली, और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा बशारत देके कि आपके बेटा होगा जिसका नाम याहिया है, तो कह रहे हैं कि कैसे होगा मेरा बेटा, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ है, और दुआ भी खुद ही अभी की है, और उसके बाद फिर ये भी कह रहे हैं। इसमें क्या पता चलता है कि अल्लाह के ऊपर भरोसा इतना है कि अल्लाह चाहेगा तो कर देगा, लेकिन असबाब क्या है, असबाब तो इस हक में नहीं है, असबाब तो बिल्कुल मुखालिफ है, असबाब तो उलट है, कहाँ से होगा ऐसे बूढ़े के जो 100 साल का हो गया हो, हाँ, और जिसकी बीवी सारी ज़िंदगी बांझ रही, अब जाके औलाद होगी वो भी, अब जो भी कितनी बूढ़ी हो चुकी, तो असबाब बिल्कुल ऑपोजिट। लेकिन जब अल्लाह का इज़न आ जाए तो असबाब नहीं चलते, अल्लाह को असबाब की मोहताजी नहीं, असबाब की ज़रूरत नहीं, फिर अल्लाह ताला वहाँ से देता है कि जहाँ से इंसान को सोच भी नहीं सकता। तो ये चंद एक कहानियाँ थीं जो आपके सामने मैंने रखी हैं। इन सब कहानियों में अगर आप देखें इस वक्त जो उम्मत के हालात हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कि अल्लाह ताला हमें ये दिखाना चाहता है सारी कहानियों से हम जो एक समरी देखते, कि देखो एक तो अपनी गलतियों को मानो, अपनी गलतियों की इसलाह करो, अपने आप को इतना बड़ा ना समझो कि हम जैसा कोई है नहीं, झुक जाओ अल्लाह के आगे, आजी अल्लाह को आजी पसंद है। आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी से आप शुरू कर के ये सब देख रहे हैं, फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलटो, क्यों नहीं पलटते, लेकिन वो भी ऐसे नहीं है रुजू के बस तस्बीहां लेके बैठ जाओ और उसके बाद काम हमने कुछ नहीं करना, कोशिश 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 और भरोसा अल्लाह के ऊपर। इसी तरह अगर आप अपनी ज़ात में अपने घर में कोई मसले मसाइल देखते हैं उनका भी हल इसी इन्हीं सारे किस्सों में, अल्लाह ताला इंसानों के यानी इंसान को जिसको चाहेगा, अगर आपको ये नज़र आ रहा है कोई भी नहीं मेरा सहारा, अल्लाह जिस बंदे को चाहेगा ना असा की तरह आपका सहारा बना देगा, मगर तब असा पे ना भरोसा करना, उस बंदे पे फिर भी नहीं भरोसा करना, अल्लाह ही है जो उसको सहारा बनाने वाला है। तो ये चीज़ इंसान को कितना ऊपर उठा देती है कि किसी की भी मोहताजी नहीं रहती, किसी की तरफ भी नहीं आप देखते, किसी के हाथों की तरफ नहीं, अरे ये नहीं होगा तो मेरा क्या बनेगा, वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, नहीं, तब भी आप तन्हा नहीं है, तब भी नहीं अकेले, अल्लाह तो है ना। ये कितना बड़ा हौसला है एक मोमिन के लिए और कितनी बड़ी तसल्ली है। और जो दुआएँ अल्लाह ताला ने पैगम्बरों की बताई कुरान करीम में, उनमें से कोई एक दुआ भी आप पकड़ लेंगे हर दुआ बेमिसाल है, हर दुआ इतनी प्यारी है, हर दुआ में आजजी है, हर दुआ में अल्लाह पे भरोसा है, हर दुआ में ये है कि अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं कुछ कर सकती हूँ। इतने बड़े पैगंबर ये कह रहे हैं, तो हम जैसे क्या हैं? अल्लाह हम नहीं कुछ कर सकते, मगर अल्लाह तू तो कर सकता है ना। जो रब मूसा के लिए समंदर को फाड़ सकता है, जो रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडी कर सकता है, जो रब ज़करिया अलैहिस्सलाम को इस बुढ़ापे के अंदर जिसमें वो भी यकीन नहीं कर सकते औलाद दे सकता है, जो मरियम अलैहिस्सलाम को बग़ैर किसी शौहर के बेटा अता फरमा सकता है, क्या वो हमारे मसलों को नहीं हल कर सकता? कर सकता है, मगर उसके ऊपर भरोसा करो, उसकी तरफ रजू करो। आपका जो भी मसला है, आप किसी भी आग में हैं, आप किसी जगह पे भी फंसे हुए हैं, किसी भी मुश्किल मसले में हैं, आपके हर मसले का हल इन किस्सों में है जो आपको तसल्ली देते हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अभी हमने सूरत पढ़ी है, पूरी सूरत के अंदर इतने सारे प्यारे सबक हैं कि इंसान सिर्फ एक सूरत को ही ले लेता है ना, तो सोचता है कि अल्लाह एक सूरत के अंदर इतने सबक, एक यूसुफ़ हैं, ज़िंदगी में इतने अप्स एंड डाउन्स हैं, कभी कैद खाना है, कभी ग़ुलामी है, कभी वो औरत फरेफ्ता हो रही है, कभी कुएं में पड़े हुए हैं, कभी बाज़ार में बिक रहे हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स। और एक दिन आता है कि इतना अरूज मिल गया कि हुक्मरानी के लेवल पे पहुंच गए, लेकिन कहीं देखा हो आपने कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, मेरे मसले हल होंगे तो फिर मैं कोई काम करूँगा। जिधर जिधर भी हैं वो, उधर अपना काम किए जा रहे हैं, उधर अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं, उधर मोहसिन बन के अपना किरदार दिखा रहे हैं, उधर सब्र की मिसाल बन के दिखा रहे हैं लोगों के लिए, उधर अपने किरदार और अखलाक से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं कि अजीज़ मिसर है तो वो मुतासिर है, कैदी हैं तो वो मुतासिर है, वो मुल्क का बादशाह है तो वो मुतासिर है, हर जगह अपने किरदार से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। क्या हम ये सबक नहीं लेते अपने लिए कि तुम जितने भी मसले में हो, इस चीज़ का इंतज़ार ना करो अब मुसलमानों के हालात सही होंगे तो फिर है, अब मेरे घर के हालात सही होंगे तो फिर है, अब मेरे ये मसले सॉल्व होंगे तो फिर है। नहीं, तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे दीन का काम जारी रखो, तुम जहाँ पे भी हो वहाँ पे तुम एक साबिरा, एक शाकिरा और एक मोहसिना बन के रहो, जिस किरदार में भी हो। फिर देखो याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी कितना बेमिसाल सबर है, कितना प्यारा सबर है कि क्या कहते हैं, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि फिर भी शिकायत लोगों से नहीं, किसी से भी नहीं शिकायत, हर बच्चे को बिठा बिठा के अपनी कहानियाँ नहीं रोते रहते हर वक्त, अल्लाह मैं तेरे से ही फरियाद करता हूँ, मेरा रोना तो तेरे ही आगे है। हम क्यों नहीं ये सीख लेते उनकी ज़िंदगी से कि रोना है तो अल्लाह के आगे रो। इंसानों को हंसते हुए इंसान पसंद है, लोगों को ना हंसता ना इंसान पसंद है, उसको रोती हुई सूरतें नहीं पसंद होती, लेकिन रब जो है उसको रोता हुआ बंदा अच्छा लगता है कि जो उसके आगे आंसू बहाए, जो उसके आगे रोए। तो अपने मसले उसको दो। याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि जितने भी बड़े मसले आ गए उन्होंने अपनी फरियादें अपने रब के आगे रखी, और वो भी मायूस नहीं हुए, सारा वक्त उन्होंने अल्लाह ताला से उम्मीद का दामन थामे रखा, चाहे हालात इम्पॉसिबल नज़र आ रहे थे। हम सबको भी लगता होगा कि मेरे मसले नहीं कभी हल हो सकते, मेरे हालात तो कभी भी नहीं ठीक होने, आज तक नहीं ठीक हुए कैसे होंगे। आपने ऐसा भरोसा करके देखा जैसे पैगंबरों को था? आपने इतना सब्र करके देखा जैसे पैगंबरों का था? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी 7 साल में कह देते कि मैं तो कैद से कभी निकल ही नहीं सकता, मैं कैसे निकलूँगा, 7 साल हो गए नहीं निकला, तो अब तो वो साकी भी जाके भूल भाल गया, अब मुझे कौन निकालेगा। वो ना उम्मीद नहीं हुए। आप क्यों ना उम्मीद होते हैं? वो भी इतने सालों बचपन से लेके जवानी आ गई, मुश्किल हालात से ही गुजरते रहे, लेकिन ना उम्मीद नहीं हुए। हम क्यों हो ना उम्मीद? तो मायूसी अल्लाह को नहीं पसंद। जो मायूस होता है वो अल्लाह को ये बता रहा होता है कि अल्लाह के अंदर नाउज़ुबिल्ला कुदरत नहीं है मेरे मसले को सॉल्व करने की, ये बताना चाहते हैं अल्लाह को। ऐसा तो नहीं, जिसके कुन कह देने से, कुन कह देने से कयामत बरपा हो जाए, और जिसके कुन कह देने से सी सारी कायनात चल रही है, क्या वो आपके मसले पे नहीं कुन कह सकता? कह सकता है, तो उसने तो कुन ही कहना है। तो मायूस ना हो बिल्कुल। हर मसले का हल इंसान के पास नहीं, डॉक्टर के पास नहीं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं, मगर हर मसले का हल अल्लाह के पास ज़रूर है। बस आप भरोसा करके देखें, आप रुजू करके देखें उसकी तरफ। अल्लाह ताला हम सब के मसाइल को हल फरमाए, सबको सुकून अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभानल्लाहि व बिहमदिही सुभानल्लाहिल अज़ीम। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.